फैज़ के आदमी अब्बास ने आरव का एक्सीडेंट करवा दिया था। वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही लाया गया था। आरव की सिचुएशन क्रिटिकल थी और उसके इनिशियल टेस्ट के बाद में उसे ओटी में ले जाया जा रहा था। आरव को उस हालत में देखकर अयान और आयु दोनों की ही हालत खराब हो रही थी। जैसे तैसे करके दोनों ने ही खुद को संभाल लिया। अयान ओटी की तरफ जा रहा था तभी उसने देखा आयु वहां ऑपरेटिंग ड्रेस में आई थी। गौरवी जी और कबीर भी वहां पर पहुंच चुके थे। इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई सबसे शांत था तो वो गौरवी जी और कबीर थे। कबीर ने रास्ते में उन्हें सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। इस वजह से गौरवी जी अपने इमोशंस पर काबू रखकर वहां आई थीं। गौरवी जी आते ही अयान से मिली जो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था। वो उसके पास जाकर धीरे से बोली, तुम्हारे डैड का भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ था। उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लाया जा सका, इस वजह से उसकी मौत हो गई। आरव ने तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हें अनुराग की कमी महसूस नहीं होने दी, तो ये सोच लेना कि तुम्हारे सामने जो शख्स है तुम्हारा वो बड़ा भाई है जो तुम्हारे बाप से भी बढ़कर है। मुझे मेरा आरव बिल्कुल ठीक चाहिए। बोलते हुए गौरवी जी की आवाज़ भारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से आंसू नहीं बहने दिया। अयान ने हाँ में पलकें झपकाईं और गौरवी जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैंने हर एक चीज़ का अरेंजमेंट कर लिया है। उनकी रिपोर्ट हो रही थी तब मैंने एडवांस ब्लड तक का अरेंजमेंट करवा दिया था। डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अयान गौरवी जी से बात कर रहा था तभी आयु वहां आई। अब वो पहले से नॉर्मल लग रही थी और उसने काफ़ी अच्छे से खुद को काबू में कर रखा था। आयु ने गौरवी जी का कंधा सहलाते हुए कहा, आपका आरव एक वॉरियर है, इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेगा। देखना, एक दो दिन में वापस पहले की तरह हो जाएगा वो। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। वहां बेड पर सिर्फ तुम दोनों के पेशेंट की नहीं बल्कि दोनों की ही जिंदगी के सबसे अजीज इंसान की जान खतरे में है, गौरवी जी ने अपनी आंखों के कोने को साफ करते हुए कहा। फिर वो उन दोनों के रास्ते से साइड हट गईं। गौरवी जी के साइड हटते ही आयु ने अयान से धीरे से कहा, अब तक तो रिपोर्ट्स आ गई होंगी, चलो अंदर चलते हैं। कहकर वो अंदर जाने को हुई तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरवी जी और कबीर की नज़रें उन दोनों पर ही थीं। अयान ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, तुम अंदर नहीं जाओगी, ये सर्जरी मैं और सिद्धि ऑपरेट करने वाले हैं। मैंने इंटर्नी डॉक्टर्स में सबसे काबिल दो इंटर्नी को बुलाया है, वो हमें असिस्ट कर लेंगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आरव को अपने सामने देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने देखा ना, उस दिन अनु की सर्जरी करते टाइम मैं एक मिनट के लिए भी इमोशनल नहीं हुई थी। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला था। प्लीज़ मुझे मेरे आरव के पास जाने दो, आयु ने जवाब दिया। वो इमोशनल हो रही थी लेकिन इस वक्त अगर वो रोती तो अयान उसे सच में अंदर नहीं जाने देता। अयान के बर्ताव पर गौरवी जी और कबीर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। गौरवी जी ने इशारे से कबीर को अयान के पास जाने के लिए कहा। कबीर अयान के पास आकर धीरे से बोला, तुम बेवजह जिद कर रहे हो, ये भी एक काबिल डॉक्टर है। तुम जानते हो दादी की सर्जरी इन्होंने ही की थी, फिर तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अयान ने कबीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने आयु का हाथ ऊपर किया जो उस वक्त डर से कांप रही थी। अयान ने आयु के हाथ की तरफ देखते हुए आयु से कहा, आई थिंक अब तुम मुझसे बेहतर समझ गई होगी। डॉक्टर ओबेरॉय, एक सर्जन के हाथ बिल्कुल भी अननेसेसरी मूव नहीं होने चाहिए और तुम कांप रही हो। ऐसे में मैं मिस्टर खुराना की जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। बाहर रहो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अयान ने काफी सख्त लहजे में कहा था। इस वक्त वो अपने प्रोफेशनल मूड में आ गया था। आयु को वहीं पर छोड़कर अयान अंदर चला गया। आयु उसके पीछे जाने लगी लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। आयु के पास बाहर रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो ये भी नहीं जानती थी कि आरव की हालत कितनी क्रिटिकल है या इस सर्जरी में कितना टाइम लगने वाला है। ऐसे में उसका दिल और बैठा जा रहा था। गौरवी जी आयु के पास आई और उसे वहां लगी चेयर पर बिठाते हुए बोली, वो ठीक हो जाएगा, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो तुम बीमार हो जाओगी और उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो मुझे डांटेगा कि मैंने उसकी मिसेस खुराना का ध्यान नहीं रखा। गौरवी जी की बात सुनकर आयु की आंखों में कैद आंसू बाहर निकल गए। वो गौरवी जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। गौरवी जी उसे प्यार से सहला रही थी। आयु ने सुबकते हुए कहा, मैंने उसे कहा था कि मुझे उसके साथ रहना है, उसने मेरी बात नहीं मानी। देखिए ना क्या हो गया दादी, आरव को कुछ होगा तो नहीं ना? अनु के बाद मैं किसी और को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो दूर क्यों नहीं चली जाती उसकी जिंदगी से? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो अपनी लाइफ में कभी कमजोर नहीं पड़ा, आज कमजोर पड़ा है तो तुम्हारी वजह से, तुम ही सारी मुसीबत की जड़ हो। सामने से छवि सिंघानिया की तेज आवाज आई जो गुस्से में आयु पर चिल्ला रही थी। छवि की बात सुनकर गौरवी जी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी इसलिए उसने कबीर को इशारे से सारा मामला संभालने को कहा। कबीर भी अच्छा से जानता था इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, कहीं ना कहीं छवि सिंघानिया भी उसमें जरूर इन्वॉल्व होगी। ये सोचकर कबीर गुस्से में छवि की तरफ बढ़ा और दबी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मिसेस सिंघानिया, आप गलत वार्ड में आ गई हैं, आप जिसकी पेट बनकर आगे पीछे घूमती हैं उसका रूम दूसरी तरफ है। छवि ने सर्द निगाहों से कबीर की तरफ देखकर कहा, मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ और जो गलत जगह है उन्हें उनकी जगह पहुँचा कर रहूँगी। बेहतर होगा कि तुम इंटरफेयर मत करो। कबीर को जवाब देने के बाद छवि आयु के पास गई और उसका बाह को कसकर पकड़ते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाने लगी। आगे से मेरे बेटे की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारी वजह से ही आज वो मरने की हालत में है। जब तक तुम उसके साथ रहोगी मौत हर वक्त उसके ऊपर मंडराती रहेगी। यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे अपने तरीके से निकालना भी आता है। आयु ने गुस्से में छवि का हाथ छटका और उस पर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा अब तुम्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर इतना जरूर पता है कि आरव तुमसे नफरत करता है। वो यहाँ पर होता तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखना चाहता। तो यहाँ से मैं नहीं तुम जाओगी। दूसरी बात, ये हॉस्पिटल हमारा है, मेरे पति का है, तो तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने के लिए मैं यहाँ पुलिस बुला सकती हूँ। आयु वैसे भी आरव की वजह से परेशान थी। ऊपर से छवि जो बोल रही थी उससे उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने छवि को दूर धकेल दिया और वापस ऑपरेशन थिएटर की तरफ आने लगी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में फैज और अब्बास ने ये सब देखा तो उन्हें भी छवि के बर्ताव पर हैरानी हुई। मुंबई शहर में फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज यही थी कि फेमस डिजाइनर और बिजनेस टाइकून आरव खुराना का एक्सीडेंट हो गया है। टीवी स्क्रीन पर बार बार सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही थी जिसमें साफ पता चल रहा था कि वो एक्सीडेंट काफी खतरनाक था। नकुल और उसके आदमी तुरंत वहां से निकलकर भाग गए और उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो ये काम पहले भी कर चुके थे इसलिए उन्हें पता था कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। पुलिस फुटेज के जरिए उन्हें ढूंढने की कोशिश में लगी थी तो वहीं इस न्यूज को देखकर ओबेरॉय फैमिली तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई।
मंथन और साक्षी ने भी ये न्यूज देखी तो वो भी खुद को नहीं रोक पाए और लाइफ केयर हॉस्पिटल में आ गए। पुलिस ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टाइट कर दी थी और ओटी के बाहर आरव के फैमिली मेंबर के अलावा और कोई नहीं था, ना ही वहां किसी को आने की इजाजत थी। उन सबसे अलग छवि वही एक कोने में खड़ी गुस्से में आयु की तरफ देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, न जाने क्या है ऐसा इस लड़की में जो वो फैज इसके पीछे पागल बना घूम रहा है। आरव भी इससे बहुत प्यार करता है, वो कभी इससे अलग नहीं होगा। एक बात तो साफ है, जब तक ये आरव के साथ रहेगी फैज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आरव को बचाने के लिए मुझे ही इससे उससे अलग करना होगा। बाहर सब अपनी तरफ से आरव के बचने की दुआ कर रहे थे तो वही अंदर जब अयान ऑपरेशन थिएटर में गया और उसने आरव को उस हालत में देखा तो उसकी आंखें नम होने लगी। अगले ही पल उसने खुद को सख्त किया और सधी हुई आवाज में कहा, डॉक्टर सिद्धि, पेशेंट की हार्टबीट मॉनिटर करो, किसी भी कीमत में डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। अयान ने सबको अपने अपने काम बता दिया था और खुद आरव को ट्रीट कर रहा था। आयु की तरह उसे भी घबराहट हो रही थी लेकिन एक पल भी उसने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया और बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से वो अपना काम कर रहा था। वहीं बाहर आयु का घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। सब उसके आसपास ही थे, आयु बिल्कुल चुप थी। फिर उसकी नज़रें छवि की तरफ गई जो उसी की तरफ घूर कर देख रही थी। अचानक ही आयु के दिमाग में छवि की बातें घूमने लगीं। उसने अपने मन में कहा, इसने कहा इन सब की जिम्मेदार मैं हूं तो इसका मतलब ये सब उसने करवाया है। छवि पहले से जानती थी कि ये होने वाला है। उसने मेरी वजह से मेरे आरव को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आयु गुस्से में उठी और फैज के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी कबीर तेज कदमों से चलकर उसके पीछे आया और आयु को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप? आप जानती हैं ना सर को पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो समझ गया था कि आयु इस वक्त कहाँ जा रही होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने ये सब मेरी वजह से किया है तो मुझे ही सब खत्म करना होगा, आयु ने धीरे से जवाब दिया और फिर फैज के वार्ड की तरफ बढ़ने लगी। कबीर उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता था इसलिए वो भी उसके पीछे आ रहा था। आयु को बाहर की तरफ जाते देखा छवि को भी कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, देर से ही सही, इस लड़की को समझ तो आया कि ये सब कुछ खत्म कर सकती है। खैर अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं करना पड़ा और ये खुद ही आरव को छोड़ रही है। अब जाए उस सैको को लेकर यहाँ से ताकि वो किसी और की जान ना ले। वहीं आयु को उस ओर आते देखा तो अब्बास ने जल्दी से टीवी स्क्रीन बंद की और फैज से कहा, लगता है वो यहीं पर आ रही है। फैज ने हाँ में पलके झपका दी। उसने अपने मन में कहा, चलिए गुस्से में ही सही लेकिन आप खुद हमारे पास चलकर आ रही हैं। काफी प्यार से रखना चाहते थे आपको लेकिन आपके उसे पति ने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए। काश आपको और उन्हें पहले ही अकल आ जाती तो आज वो हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच झूल नहीं रहे होते। मरना तो उन्हें वैसे भी है, उनके मरने से पहले ही आप हमारे पास आ जाएंगी, ये हमें थोड़ा सरप्राइज कर रहा है। आयु गुस्से में फैज के कमरे के पास आई। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो अब्बास बाहर आ गया और उसने आयु को अंदर जाने की इजाजत दे दी। कबीर भी आयु के साथ अंदर जा रहा था लेकिन अब्बास ने उसे वहीं पर रोकते हुए कहा, यहाँ आने की इजाजत सिर्फ उसे है। अब्बास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कबीर को गुस्सा आ रहा था। उसने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे दीवार पर लगाते हुए कहा, तुमने किया है ना ये सब? आई स्वेयर अब्बास अहमद, आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। गुस्से में कबीर ने अब्बास के मुंह पर जोरदार पंच मारा। उसी के साथ उसके गार्ड हरकत में आ गए और कबीर पर अपनी बंदूकें तान ली। अब्बास ने हंसते हुए उन सबको गन्स नीचे करने का इशारा किया। फिर वो कबीर की तरफ देखकर बेशर्मी से बोला, हाँ मैंने किया है, पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो था कि मुंबई में आ ही नहीं रहा था। देखो ना, कल रात को ही यहाँ वापस आया था और आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कितना बदकिस्मत है ना, अकेले ही मर गया। उसके साथ उसकी पत्नी होती तो शायद उसे इतना दुख नहीं होता। मरने का भी दुख होगा और मरने के बाद अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखने का दुख भी। अब्बास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर ने उसका गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। अब्बास का दम घुट रहा था। उसने अपने हाथ पर मारते हुए कबीर को खुद से दूर किया। वो दम घुटने की वजह से खांस रहा था। अब्बास ने गुस्से में कबीर की तरफ देखकर कहा, जो गलती तुम्हारे बॉस ने की है वो तुम करने की सोचना भी मत। उसने एजाज खान के बेटे को चोट पहुंचाई है और तोहफे में उसे मौत मिली है। अगर तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बॉस तुम्हारे खानदान और तुमसे जुड़े हर शख्स का नामोनिशान मिटा दे। मैं बहुत खास हूं उनके लिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी थोड़े दिनों बाद वो भी आंखों के इशारे करते हुए थक जाएगा। सोचो क्या होगा जब उनकी इन आंखों के इशारों को कोई समझने वाला ही नहीं रहेगा। 24 घंटे अब्बास अहमद, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। कहते हैं मरने से पहले अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेनी चाहिए। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता जिसे पता होता है कि वो मरने वाला है। मौत मुबारक हो अब्बास अहमद, कबीर ने सर्द लहजे में कहा। आरव उसके लिए उसकी फैमिली से बढ़कर था। ऐसे में अब्बास ने उसके सबसे वीक पॉइंट पर चोट की थी तो वो उसे जाने कैसे देता। अब्बास को दूसरी तरफ थकेलकर उनके गार्ड्स के होते हुए कबीर अंदर कमरे में आयु के पास चला गया ताकि वो गुस्से में फैज को कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। कबीर आरव को मारने वाले को सस्ते में तो नहीं जाने देगा। दिस इज कॉल्ड रियल फ्रेंडशिप।